आयु हॉस्पिटल में रोहन चौहान के साथ बैठी थी। रोहन ने आयु को आरफ का सारा सच बता दिया था। आरफ के पास कोई इम्पॉर्टेंट चिप थी जो रोहन आयु के जरिए मंगवाना चाहता था। बदले में उसने आयु से अनुष्का के कातिल को सजा दिलाने का वादा किया। आयु कोई फैसला नहीं ले पा रही थी, इसीलिए वो चुपचाप बैठी थी। साथ ही आरफ का सच जानने के बाद इसे शौक लगा था। आयु को चुप देखकर रोहन ने कहा, जानता हूँ अचानक तुम्हारे सामने पूरा सच आने की वजह से तुम उलझन में हो। तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार और विश्वास साफ नजर आ रहा है, पर ट्रस्ट मी, वो इसके लायक नहीं है। एक बार के लिए बाकी चीज़ों को जाने देते हैं, वो तुम्हें भी धोखा दे रहा है। वो उस माहिरा लूथरा के साथ रिलेशन में है और तुम्हारे साथ प्यार करने का दिखावा करता है। ही इज़ अ ब्लडी चीटर, जो बात लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड के लिए रिश्ता बनाता है। आयु को अपनी बातों के जाल में फंसाने के लिए रोहन को जो भी समझ आ रहा था वो वही कह रहा था। उसकी बातें सुनकर आयु की आंखें डबडबा रही थीं और उसका कारण वो खुद नहीं समझ पा रही थी। सुबह जब वो आरफ से मिली थी तब कभी उसकी शक्ल ना देखने की बात कही थी, तो वहीं आरफ उसका सच पता चलने पर दिल ही दिल में उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद आयु ने भारी आवाज में कहा, वो मुझसे प्यार नहीं करता, ना ही मैं उससे। आपको गलतफहमी हुई है। ओ रियली डॉक्टर ओबेरॉय, तुम्हारी आंखें तुम्हारे जज्बात साफ बता रही हैं, रोहन टॉन्टिंग वे में बोला। रोहन की बात सुनकर आयु की आंखों में कैद आंसू बह गए। ये आंसू अनु के लिए हैं, बोलते हुए आयु ने अपने आंसू पोंछे। अगर सच में ये आंसू अनुष्का के लिए हैं तो वो इंसाफ चाहती हैं। वो मरना डिजर्व नहीं करती थी, मैं खुद उसका फ़ैन था। उसके तो हेटर्स भी उसकी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उसकी एक्टिंग में दम था, और वो कोई थर्ड ग्रेड मूवीज़ नहीं करती थी। इस नेपोटिज्म से भरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में उसने खुद के दम पर अपना नाम बनाया था। स्टार किड्स भी उसकी इज्जत करते थे। रोहन अनु के नाम पर आयु को इमोशनल कर रहा था ताकि वो जल्दी से हाँ बोल दे। मुझे इस बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए, मैं आपको इंस्टेंटली हाँ नहीं कह सकती, आयु ने जवाब दिया और उठकर जाने को हुई। अपना मतलब पूरा करने के लिए रोहन ने जो भी पत्ते फेंके थे वो किसी काम नहीं आ रहे थे। रोहन आयु के पीछे गया और आयु का हाथ पकड़कर उसे रोका। रोहन ने आयु को मनाने के लिए आखिरी कोशिश करते हुए कहा, कहीं तुम उस फाइट क्लब इसलिए तो नहीं जाती ताकि आरफ से बदला ले सको? देखो, जहान तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। रोहन के मुँह से जहान का नाम सुनकर आयु ने हैरानी से पूछा, तुम उसे कैसे जानते हो? कहीं उसने तो तुम्हें मेरे बारे में सब नहीं बताया? रिलैक्स करो, उसने कुछ नहीं बताया। हम दोनों एक ही बैच में थे और सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे थे। पैसे नहीं होने की वजह से वो फीस वगैरह नहीं भर पाया और पीछे रह गया। बाकी आजकल वो क्या करता है ये मुझसे छुपा नहीं है। तुम अकेले आरफ खुराना का सामना कभी नहीं कर पाओगी। उसके चारों तरफ उसकी ढाल और इतनी मजबूत दीवारें हैं कि उसे चोट पहुँचाना तो दूर, तुम उस तक पहुँच भी नहीं पाओगी। रोहन ने अपनी बात रखी, फिर उसने रिक्वेस्टिंग वे में कहा, प्लीज बैठो, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी। उसके बाद रोहन और आयु दोनों ही वापस बैठ गए थे। आयु रोहन की कही हर बात पर गौर कर रही थी और उसने अभी कहा वो काफी हद तक सही था। आयु का आरफ तक पहुंचना आसान नहीं था और वो आज उसने देख लिया था। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतनी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ले सकती, आयु ने इस बार प्रैक्टिकल होकर जवाब दिया। रोहन ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, तुम अपना टाइम ले सकती हो, पर इतना भी मत लेना कि देर हो जाए। और एक बात याद रखना, जो ट्रेनिंग तुम जहान के फाइट क्लब में ले रही हो उससे ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग तुम्हें हमारा ब्यूरो देगा। वो तुम्हें हर तरीके से तैयार करेगा, वो भी सिर्फ एक महीने में। मैंने कहा ना, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। मैं आपसे दो दिन बाद यहीं पर मिलूंगी। कल संडे होने की वजह से मेरी शिफ्ट नहीं है, हम मंडे को मिलते हैं, आयु ने जवाब दिया। रोहन ने उससे और भी बात करने की कोशिश की, लेकिन आयु का मूड नहीं था और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। इतना सब कुछ सुनने के बाद वैसे भी उसका मन काफी डिस्टर्ब था। दूसरी तरफ खुराना इंडस्ट्रीज में आरफ अपने केबिन में था, उसके साथ कबीर भी था। उनका काम हो चुका था लेकिन फिर भी आरफ युवानी का वेट कर रहा था ताकि वो ड्रेस लेकर आ सके जो उसने आयु के लिए डिजाइन की थी। रात के लगभग 9 बजे के करीब युवानी ड्रेस के साथ आरफ के केबिन में पहुंची। केबिन के अंदर आते ही युवानी ने जल्दी से ड्रेस आरफ की डेस्क पर रखी और कहा, आप एक बार चेक कर लीजिए, डिजाइनर अभी भी नीचे हैं, अगर कुछ चेंज वगैरह करवाना हो तो। आरव ने बिना कुछ कहे ड्रेस को निकाल कर देखा। वो बिल्कुल आयु के साइज की थी और उसी तरह की थी जैसी वो चाहता था। ये बिल्कुल परफेक्ट है, उसे देखते ही आरव के चेहरे पर चमक आ गई। आरव वो ड्रेस वापस युवानी को देते हुए बोला, ये बिल्कुल परफेक्ट है, तुम इसे सही से पैक करवा दो, मैं तुम्हें नीचे मिलता हूँ। युवानी ने उसकी बात पर बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया। वहाँ से जाने से पहले उसने कबीर की तरफ देखा। कबीर और युवानी दोनों आंखों ही आंखों में बात कर रहे थे। आरव ने उन्हें वैसे करते हुए देख लिया था। उसने आईज रोल करके कहा, कम ऑन गाइज, तुम दोनों तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं कोई विलन हूँ। मेरे जाने के बाद तुम दोनों आराम से साथ में चिल कर सकते हो। आरव की बात सुनकर युवानी ने तुरंत अपनी नजरें दूसरे तरफ कर ली और वहाँ से चली गई। वहीं कबीर भी मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ घुमा रहा था। इसका मतलब आप अपनी वाली से मिलने जाओगे? आपको पता है वो इस वक्त कहाँ होगी?
कबीर ने बात को बदलते हुए कहा, हाँ मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि इस वक्त वो कहाँ है। चलो कल मिलते हैं और दादी को बोल देना कि मुझे मीटिंग की वजह से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। वहाँ से जाने से पहले आरव ने कबीर को सब कुछ समझा दिया। झूठ बोलने की क्या जरूरत है, अगर मैं दादी को सच में बताऊंगा तो आपसे ज्यादा वो खुश होगी। मैं उनसे झूठ नहीं बोलने वाला, कबीर ने सिर हिलाकर कहा। आरव ने उसकी बात पर हामी भरी और वहाँ से चला गया। नीचे उसे युवानी मिल गई थी जिसने उसे ड्रेस का बैग दे दिया था। आरव ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैग लेकर चला गया। उसके ऐसा करने पर युवानी ने बड़बड़ाकर कहा, एटलीस्ट थैंक्स तो बोल ही सकते थे। युवानी ने सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। वहीं आयु अपने तय समय पर फाइट क्लब पर ट्रेनिंग के लिए आ चुकी थी। आज वो थोड़ी लॉस थी क्योंकि उसे आरव के बारे में काफी कुछ पता चला था। वहीं इन सबसे बेखबर आरव आयु से मिलने के लिए फाइट क्लब जा रहा था।